हरे कृष्णा। यहाँ पर आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 16 श्लोक संख्या 30 और 31 पे चर्चा करेंगे। बोर्ड पर 31 नंबर श्लोक लिखा है, अब हमारे पीछे इसको बोलने का प्रयास कीजिए। या वै हरिश्चंद्रमते, इट्स मखे है, विक्रेता पुरुष पशु स्तुत्वा देवान प्रजा ईश आदीन मुमुचे पाश बंधनात्। यो वे हरिश्चंद्र मुखमखे विकृतः पुरुष पशु कृत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पाशबन्धना। यो वे हरिश्चंद्रमखे विकृतः पुरुष पशु कृत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुचे पाशबन्धनात्। यो वे हरिश्चंद्रमखे विकृतः पुरुष पशु कृत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुचे पाशबन्धनात्। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। या जो शुना शेफा वे निसंदेह हरिश्चंद्र मखे, राजा हरिश्चंद्र द्वारा संपन्न यज्ञ में विक्रेता बेचा गया पुरुष व्यक्ति पशु बलि पशु स्तुत्वा स्तुति करके देवान देवताओं को प्रजा ईश आदीन ब्रह्म इत्यादि मुमुचे छोड़ दिया गया पाशबंधनात्, पशु की भांति रस्सी के बंधन से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शुना शेफ के पिता ने शुना शेफ को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि दिए जाने के लिए बेच दिया। जब शुना शेफ को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे छोड़ दें या छोड़ा दें, और वह उनकी कृपा से छोड़ा दिया गया। इससे पहले के श्लोक में एक तात्पर्य नहीं था तो फिर भी उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। विश्वामित्र ने अजीत गर्ग के पुत्र शुनशेव को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनशेव को अपना सबसे बड़ा भाई मान ले। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शुनशेव का वर्णन इस प्रकार है। हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपने प्राण की रक्षा करने के लिए शुनशेव के पिता से शुनशेव को यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए खरीद लिया था। शुनशेव इसलिए हरिश्चंद्र महाराज को बेच दिया गया क्योंकि वह मझला बेटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में मनुष्यों की पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है, और अध्याय का नाम है जो हम यहाँ ले रहे हैं भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। तो इस अध्याय में हम जानते हैं कि किस प्रकार विश्व ये परशुराम जी ने 21 बार पूरी की पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, क्योंकि हय वंश के लोगों ने उनके पिता जमदाग्नि का वध कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने उनको फिर से यज्ञ कर अपने पिता को जीवित कर दिया। लेकिन क्योंकि हय वंश के लोग ये क्षत्रिय बहुत क्रूर हो चुके थे और समाधि निस्त जमदाग्नि का वध किया था, ले गए थे, तो इससे बड़ा क्रोधित हुए परशुराम जी, जो कि स्वयं भगवान के एक अवतार है। और उन्होंने क्या किया, इन क्षत्रियों को सबक सिखाने के लिए इनको ताड़ना देना शुरू करी और इनका वध करना शुरू किया। तो पूरी की पूरी पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई। एक तरफ से मारना शुरू करते थे, दूसरी जगह जाते थे, फिर उत्पन्न होते थे, फिर उनको मारा जाता था। इस प्रकार 21 बार पूरी पृथ्वी को खाली कर दिया। अब एक ही राजा रह गए थे और पूरी की पूरी पृथ्वी पर फिर परशुराम जी का ही राज्य हो गया, किस्म से सब कुछ मिल गया उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा किसको दान दे दिया, ब्राह्मणों को दान दे दिया कि पूरी पृथ्वी तुम्हें दान दे रहे हैं। लेकिन बाद में उनको इसका पश्चाताप करने के लिए भी भेजा गया, और घर में भी जो प्रॉब्लम हुई थी उनके उसके लिए भी, तो लगभग एक साल तक वो तीर्थों का भ्रमण किया उन्होंने। तो ऐसे भगवान को कोई सब की जरूरत नहीं है, लेकिन लीलावश ब्राह्मणों की बात मानना, उत्कृष्ट ऋषियों की बात मानना, बड़ों की बात मानना, तो भगवान स्वयं होते हुए भी जो सबको पवित्र करते हैं उन्हें पवित्रता की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी समाज में ये दिखाने के लिए, अगर कभी कोई किसी से ऐसा कुछ हो जाए तो उसको बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए और तीर्थों का भ्रमण कर अपने पापों को धोना चाहिए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी होता है, एक बार भगवान जब अरिष्टासुर का वध करते हैं तो गोपियां उनकी खिंचाई करती है, राधा रानी बोलते नहीं, हम आपको अपनी टीम में नहीं लेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, अरिष्टासुर का वध किया है, उससे पहले एक बार वत्सासुर का भी वध किया था, क्या चक्कर है, गाय क्यों तुम गाय को पशुओं को मार रहे हो। तो कहते क्या करना, कहते पश्चाताप करना होगा। कहते कैसे, कहते जाओ सारी नदियों में स्नान करके आओ, देश भर की विश्व भर की सारे तीर्थों में जाकर स्नान करके रहो। स्नान करते हुए जो उन तीर्थों का जल पान करते हैं तो पवित्र होता है व्यक्ति। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा लंबा टूर हो जाएगा, तब तो इस तरह से। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने सभी नदियों का आह्वान किया, सब उनकी शरणागत रहती हैं, और भगवान ने जोर से जमीन पर पैर मारा, जहाँ पर अरिष्टासुर मरा था उस जगह पर बड़ा खड्डा हो गया। तो सारी नदियों को बोला कि आप आइए इसमें, है ना, हम स्नान करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। तो सारी नदियां जो हैं भगवान के आगे हाथ जोड़ती हैं और सारी नदियां उस कुंड में चली जाती हैं, और फिर भगवान कृष्ण स्नान कर लेते हैं। फिर भगवान भी श्रीमती राधा रानी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते तुमने क्योंकि एक असुर का साथ दिया है तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। कहते हमें कैसे पश्चाताप करना, कहते तुम भी कुंड बनाओ अपना और फिर सारा स्नान करो, या तो फिर तुम जाओ सारी नदियों में। तो उन्होंने कहा हम भी कुंड बनाएंगे अपना। फिर मानसी गंगा से सारी गोपियां लाइन में लग गई और मटके पे मटका जोर लगा के ऐसा साथ ही हाथ बढ़ाना गाना गाया और क्या किया, उस कुंड को भर दिया। और उन्होंने अपने हाथ से खोदा उसको, चूड़ियों से जो जो चीज़ें मिली उस कुंड को बनाया, तो वो राधा कुंड के नाम से जाना गया। थक गई थी बेचारी, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इशारा किया सारी नदियों को, वो भी पहुंच गए कि हे श्रीमती राधा रानी, आप तो हमारी आराध्या हो, हमारी संरक्षक हो, हमें सेवा का मौका दीजिए ना, हमने अगर कृष्ण का भर दिया तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आप तो कृष्ण की भी आराध्या हो। तो फिर श्रीमती राधा रानी का भी कुंड भर दिया गया, तो श्याम कुंड राधा कुंड। तो पश्चात आपके लिए जो है कई बार इस पर कर, ऐसे बलराम जी ने भी जो है जब रोमहर्षण यहाँ गए तो मार के एकदम उनको तिनका मारा, क्योंकि सिंहासन आसन से नहीं उठे, व्यास आसन से नहीं उठे। तो बलराम जी ने कहा ये क्या चक्कर है, हम आए हैं और हमारे बारे में कथा कर रहे हैं और हमको देख के नहीं खड़ा हो रहे, इतना अहंकार, इतने श्लोक क्या याद कर लिए, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या बन गए, तो उठे नहीं। तो उन्होंने तुरंत एक तिनका लेकर उनका वध कर दिया। और भगवान पे कोई रूल नियम तो चलते नहीं है कि नहीं, भगवान का नाम एक स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट, और वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नियमों को बदल सकते हैं। महाभारत में भगवान ने दिखाया कई बार नियमों को बदलते हुए, है ना। तो कई बार कुछ भी कर सकते हैं भगवान, आप अपील नहीं कर सकते, आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, फाइन नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते भगवान को, है कि नहीं। वैसे तो भगवान सब नियमों के अनुसार ही करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं कि पकड़े भी ना जाए और काम भी हो जाए है ना। मक्खन चुराने जाते थे, लेकिन लोग बोलते देखिए मक्खन चुरा रहे हैं, ये कैसे भगवान है, तुम्हारे भगवान मक्खन चुराते हैं। तो देखने में तो चोरी लगी रही है ना, कि ये कैसे भगवान है जो चोरी करते हैं। लेकिन मक्खन किनका चुराते थे, जो गोपियां सुबह से लेकर शाम तक याद करती रहती थी, चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आए है ना। देखो गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, है कि नहीं, वस्त्र चुराए। कौन सी गोपियां थी, वो उम्र खुद की कितनी थी, कोई ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन गोपियां कहीं ना कहीं उनको अपना पति रूप में देखना चाहती थी, और पति के साथ तो व्यक्ति। तो इस प्रकार भगवान के ऊपर जो भी ब्लेम लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं बराबर कर लिया जाता है भगवान की तरह। बलराम जी ने भी जब वध किया तो ब्राह्मणों ने कहा भी तुमने इसका वध कर दिया व्यास आसन पर बैठे व्यक्ति का, तो जाओ थोड़ा भ्रमण कराओ, आप भी पश्चाताप कराओ। वैसे जरूरत नहीं बलराम जी को भी पश्चाताप करने की, लेकिन फिर भी बलराम जी भी गए, कहते इसी बहाने क्या होता है भ्रमण हो जाता है तीर्थों का। भगवान अगर तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ में जाने का मतलब ये नहीं कि वो स्नान करके अपने को पवित्र करने गए, सारे के सारे तीर्थ पद बोला गया है, तो सारे के सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते। और जब हम जैसे वो लोग वहां जाते हैं तो हम अपने को पवित्र करते हैं, लेकिन भगवान जब वहां जाते हैं तो तीर्थों को पवित्र करते हैं। या भगवान के शुद्ध भक्त जाते हैं तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो भी तीर्थ को पवित्र करते हैं, तो उनके लिए पश्चाताप नहीं है, बट फिर भी। तो इस प्रकार पश्चाताप के लिए परशुराम जी भी गए। और अब जो है कथा थोड़ी आगे बढ़ती है विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र बताए जा रहे हैं, और किस तरह से राज ऋषि से होकर ब्रह्म ऋषि का पद उन्होंने स्वीकार किया और 100 पुत्र हुए। और यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने ये जो शुनशेव थे जिनका वध होने वाला था, जो कि रोहित का होना था, रोहित ने उनको खरीद लिया, कहा कि मेरी जगह तुम चले जाओ, तुम्हारा वध हो जाएगा, तो उनकी भी वहाँ पर रक्षा की गई। तो और उनको रक्षा करने के बाद शुनशेव को बोला कि तुम अपने पुत्रों को बुलाया और उनको कहा कि तुम्हारा ये आज से बड़ा भाई है, जो 50 बड़े थे उनको छोड़कर उसके नीचे के 50 मान गए कि ठीक है हमारे बड़े भाई। पहले तो माने नहीं, पिता की बात नहीं माने तो पिताजी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मलेच्छ बन जाओ। कहते नहीं नहीं हम आपकी बात मानते हैं, जैसा बोलेंगे करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको बड़ा भाई मान लेते हैं। तो इस तरह की कथा चल रही है। और आज बताया जा रहा है कि राजा हरिश्चंद्र का यज्ञ था जहाँ उनकी बात हो रही थी। रूपा जी परिपेट में बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पशु, जैसे पशु बलि होती थी उस प्रकार नर बलि का भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो नर बलि भी दी जाती थी, प्रचलित थी, और बलि यज्ञों में देना या पशु बलि देना कहीं ना कहीं वैदिक विधान हुआ करता था शास्त्रिक। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते हैं, समय बदलता है, तो प्रोसेस ऑफ डिवोशन भी बदल जाता है, प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग भी बदल जाता है। अभी जैसे कलयुग चल रहा है इसमें भी यज्ञ है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ है। तो कृते यज्ञ ध्याय तो विष्णु त्रितयाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्युग में तो लोगों की आयु बहुत थी, सत्युग बहुत लंबे समय तक था, 1728,000 वर्षों तक एक एक लाख साल व्यक्ति जीता था, तो ध्यान इत्यादि कर कर वो अपने को शुद्ध करता था और मुक्त हो जाता था। त्रेता युग आने पर यज्ञ प्रधान हो गए, मुख्यतः यज्ञ गए। ऐसा नहीं कि सत्युग में यज्ञ होंगे, सत्युग में भी यज्ञ, लेकिन प्रधान उस समय सेवा यह रहती थी यज्ञ की त्रेता युग में। इसलिए त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 साल रह गई और 12,96,000 वर्ष तक त्रेता युग रहा। लेकिन अब इसमें बलि देने का या सेक्रीफाइस करने का समय आ गया। द्वापर में अर्चन विधि शुरू हो गई और कलयुग में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन और जप करना। इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये जो यज्ञ और बलियां दी जा रही हैं, जिसको यज्ञ किया जा रहा है, उसके पीछे क्या लोगों की महत्वाकांक्षा रहती थी, तो बताया जाता है कि जब भगवान ने क्रिएशन करी तो उस क्रिएशन के बाद श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि बोला गया कि जाओ तुम अब यज्ञ कर प्रसन्न रहो और अपनी इच्छाओं को पूरा करो और मुक्ति के लिए भी प्रयास करो। तो ऐसा वरदान दिया गया लोगों को यज्ञ प्रोसेस बनाकर। तो जब इस यज्ञ के प्रोसेस में लोगों को यज्ञ किया जाते थे तो बहुत कुछ उस यज्ञ में दिया जाता था या लगाया जाता था। मंत्रोच्चारण बहुत शुद्ध रहा करता था, चेतना बड़ी शुद्ध रहनी पड़ती थी। और इन यज्ञ को संपन्न करने के पीछे धारणा या भाव क्या रहता था, एक खुशमय जीवन, मतलब खुशहाल जीवन, कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, सब कुछ अच्छा अच्छा चले। और एक दिन सब कुछ अच्छा अच्छा होते होते हम मुक्त हो जाएं और चले जाएं, भाव ये रहता था। जीवन के जो संसाधन हैं, जो कंफर्ट्स हैं, वो मिलते जाएं, तो ये दिमाग में रहा करता था। यज्ञ करने के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, यहां तक कि जो बलि में बलि देते थे पशुओं की, तो उन पशुओं की बलि देते समय श्री श्री राधा राधिकन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। यज्ञ संपन्न करने के बाद उस यज्ञ की सफलता चेक करने के लिए निर्भर होती थी कि बलि दी जाए। अभी अगर बलि स्वीकार हो गई तो कैसे पता चलेगा कि जो पशु अंदर डाला जाता था यज्ञ में, वो बूढ़ा पशु वो फिर से जवान होकर बाहर आ जाता था। क्या बात, मतलब इसे पता चलता था, ठीक है, मंत्रोच्चारण शुद्ध था, ब्राह्मण ठीक थे, नियत साफ थी, सब कुछ बढ़िया था, डाल कर देखो भैया हो गया कि हाँ बाहर आ गया, यज्ञ सफल, बोलो हरि बोल। तो बड़ी, और यज्ञ करना बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता था। मंत्रोच्चारण में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई प्रोनाउंसिएशन में, हम लोग तो जैसे तैसे बोल लेते हैं, कुछ ना कुछ लोग इधर उधर के लगा लोगों के, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अभी भी आजकल ब्राह्मण जो है साउथ इंडिया में अधिकतर अन्य संप्रदायों के बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर, उन श्लोकों को या उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए अगर थोड़ा सा ई ऊ की मात्रा इधर उधर हो गई या कोई नहीं लगा डॉट शॉट अगर उसमें जो भी है, तो गड़बड़ हो जाती थी, अर्थ का अनर्थ हो जाता था, या जो चीज चाहिए उसकी जगह कुछ और मिल जाती थी। श्रीमद् भागवत में आती है कथा ऐसी, एक बार बोला हे भगवान, प्रसन्न कर रहे थे भगवान को, भगवान आ गए थे प्रसंग से, और एक नहीं आए तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए कभी चुटकुले भी बनाए जाते हैं इस तरह के, कि एक बार प्लेन से जो है ये नदी में उफान आ गया, तो एक मुस्लिम था तो उसने कहा या अल्लाह मुझे बचाओ, कूद गया, प्लेन में दिक्कत हो गई थी, तो उसको अल्लाह ने बचा लिया। तो दूसरा क्रिश्चियन था, तो या क्राइस्ट या यीशु मुझे बचाओ, है ना, या गॉड मुझे बचाओ, उसको बचा लिया गया। और एक सरदार जी भी थे तो वो भी कूदे, तो उन्होंने भी बोला नानक देव जी रब दा वास्ता मैनू बचाओ, नानक देव जी ने बचा लिया उनको। एक हिंदू भी था उसमें, हिंदू भी कूदा जोर से, जय माता दी, जय हनुमान, शौर्य वाली माता, चिंतपूर्णी, जय भगवान शिव, जय विष्णु, सबके नाम लेता रहा, कोई नहीं आया। उठा नीचे गिर गया, मर गया। तो उसने मरने के बाद पूछा कि भी मुझे बचाया क्यों नहीं, उन सबको बचा लिया आप लोगों ने, मेरे से नफरत है क्या? कहते ना ऐसा नहीं है, आपने सबके नाम ले लिए, वो जा रहे थे वो रुक गए, वो जा रहे थे वो रुक गए, देखो मैं किसको बुला रहे हो, इतने में नीचे जमीन आ गई। तो कई बार ऐसे जोक बनाए जाते हैं, वो पता लगा कि लोग अज्ञानता में हैं, उन्हें पता नहीं है। कईयों को लगता है बात तो ठीक है, उनका तो एक ही भगवान है और हमारे इतने सारे वैरायटी। तो कई बार एक जो फिलोसफिकली साउंड नहीं है उनको कन्फ्यूजन लगती है कि अन्य धर्मों में एक भगवान और हमारे यहाँ पे बहुत सारे, ये क्या चक्कर है। तो उसका बड़ा सीधा सा वह है कि ऐसा नहीं कि भगवान अलग अलग है। पहली बात तो भगवान तो वास्तव में एक ही है, जिसने पूरा संसार बनाया, हर जाति हर धर्म के लोगों को बनाया, धर्म के प्रिंसिपल्स बनवाए, व्यक्ति को भेजा, सबका एक ही है, भगवान एक ही है। ये कंसेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। फिर जब वहां पे बोला जाता है, अगर कुरान पढ़े तो उसमें बोला जाता है कि अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाए और सारा संसार बनाया, या अल्लाह जो है आपके हर कर्म को देखता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, और अल्लाह जो है बहुत महान है, अल्लाह जो है बहुत दयालु है, वो आपकी हर चीज को पूरी करता है, बड़ी सारी चीजें लिखी। तो ये जो चीजें लिखी हैं कि अल्लाह ऐसा करते हैं, अल्लाह ऐसा करते हैं, अल्लाह ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं वो, इसलिए अल्लाह ही पूज्य है, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, और अल्लाह शब्द का मतलब है वो जिसने सब कुछ किया वो बहुत महान है, अल्लाह शब्द का मतलब बहुत महान। तो गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अल्लाह या वो खुदा 6 दिन में ये सारी सृष्टि कैसे करते हैं, हमारी हर हरकत के ऊपर कैसे नजर रखते हैं, हमारे गुनाहों को कैसे माफी देते हैं, और जब हम गलत करते हैं तो कैसे पनिशमेंट देते हैं, ये सारी बातें जो लिखी हैं उसमें, ये जो हैं हमारे को जो वैदिक ग्रंथ और पुराण मिलते हैं, तो वो जो अल्लाह की क्वालिटीज बताई वो क्या करते हैं, वो यहां पर डिटेल्स में बताइए। क्या बताइए? विस्तृत जानकारी दी गई है सृष्टि की भगवान ने। ओके, अब ये सृष्टि कैसे हुई तो यह डिटेल है, विस्तृत जानकारी है। अल्लाह ने सृष्टि की इसकी जानकारी और व्याख्या के साथ है। कैसे है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, फिर बलराम जी चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वसुदेव के रूप में करते हैं, फिर इनसे एक नारायण जी प्रकट होते हैं, फिर उनसे एक चतुर्व्यूह और बनता है, उसके बाद संकर्षण द्वितीय से महाविष्णु प्रकट होते हैं कारण दक्षाय विष्णु, फिर उनसे गर्भो दक्षाय विष्णु, उनसे शिरो दक्षाय विष्णु। तो कारण दक्षाय विष्णु है, उनसे सारे उनके एयर होल से या मुख से या श्वास लेते हैं जो छोड़ते हैं, तो उससे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गई सृष्टि की उत्पन्न। सृष्टि कैसे उत्पन्न हो रही है? ऐसे उत्पन्न होती है, सृष्टि के अंदर जो सारे जो ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च के बाद जाना और बोला इसको बिग बैंग थ्योरी, कारण दक्षाय विष्णु के शरीर से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं उसमें अगर कुछ आवाज भी हुई होगी तो उसको वो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और फिर लगाते तुक्का ही है, देखा उन्होंने भी नहीं है, लेकिन तुक्का जो है वो बहुत नजदीक है रियलाइजेशन, जो रियलिटी है उसके पास। तो कैसे सृष्टि हुई तो वो बता रहे हैं, फिर कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, फिर शिरोदीक्षा विष्णु के रूप में किस प्रकार भगवान हर चीज हमारी देखते हैं, हर चीज को जानते हैं, खुदा हर चीज को जानते हैं। लिखा है कुरान की हर 4वें श्लोक में यही लिखा है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अल्लाह सब कुछ देखने वाला, उससे कुछ छुपा नहीं है। तो कैसे छुपा नहीं है, मतलब मैं कुछ छुपा के कर रहा हूं, फिर क्यों नहीं छुपा? क्योंकि और डिटेल में जाएंगे तो जो शिरोदक्षाय विष्णु है, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सभी जीवों के हृदय में, बनाए गए योनियों के हृदय में शिरोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में और हर जीवात्मा के हृदय में चले जाते हैं। और गीता में लिखा है भगवान ने कि मैं जब सबके हृदय में चला जाता हूं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो उनके द्वारा की जाने वाली हर बात, हर विचार, हर कार्य कर्म क्रिया को नोट करता रहता हूं। कुरान में लिखा है कि अल्लाह सब जानते हैं, कैसे जानते हैं ये पुराणों में और वेदों में लिखा है। जो लोग अल्लाह की आयतों पर चलते हैं, अल्लाह के कहने के अनुसार चलते हैं, उनको प्राप्त होगा क्या? उनको ऊपर जन्नत में हूरों के मध्य 72 हूरे मिलेंगी और वहां पर बागों के नीचे भी पानी बह रहा है, आनंद है वहां पर। तो उनको इनाम है, वो स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाएंगे। और अगर अल्लाह की आयतों से मुकर जाते हैं, अल्लाह की बात पर विश्वास नहीं करते, तो फिर उनके लिए दोजख है, जहन्नुम है, उनका इंतजार कर रहा है, जहां पर आग के दरिये हैं। और उनको वहां पर खूब यातना मिलेगी और ये सब अल्लाह देंगे। गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही बात है। अब यही अल्लाह जिनके हम बात कर रहे हैं कृष्ण की, अभी कृष्ण गोलोक धाम में अष्टकाली लीला कर रहे हैं राधा रानी अन्य गोपियों के साथ। अचानक पता चला एक व्यक्ति ने जो है पाप कर दिया, तो भगवान ऊपर बांसुरी छोड़ के नीचे थोड़ी आएंगे, चल इधर भाई तेरे को मार, चल इधर चल। नहीं नहीं भैया, वो राजा है सबके, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सरकार की बात करते, अभी किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की, मोदी की, बीजेपी की अलायंस। तो उनके उनके नेता कौन है जो देश चला रहे हैं? नरेंद्र दामोदर मोदी। दामोदर बोलोगे तो फायदा होगा, खाली नरेंद्र नरेंद्र बोलने का भी फायदा है, दामोदर बोलने का भी फायदा है, ठीक है कि नहीं? तो नरेंद्र दामोदर मोदी, तो अब सरकार उनकी है। तो ऐसा थोड़ी कि नरेंद्र मोदी जी आके आपकी, जब यहां पर रेड लाइट में काले गेट के पास जाम लगता है तो मोदी जी खुद आके करते हैं, आइए आप चलिए आप चलिए, करते हैं क्या? ऐसा सरकार का काम है, लेकिन कांस्टेबल से करवाते हैं, है कि नहीं? सरकारी ऑफिस में कांस्टेबल काम करते हैं, ना कि मोदी जी खुद आके करते हैं, लेकिन वो सारे व्यक्ति सरकार के माने जाते हैं डिटेल। उसी तरह भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में 24 आवर्स माधुर्यमय लीलाओं में अनुरक्त हैं अपने अंतरंग पार्षदों के साथ। लेकिन जो लोग यहां पर इस संसार के नियमों का पालन नहीं कर रहे, वही भगवान उनको पनिशमेंट दे भी रहे हैं। कहां भेजकर? जहन्नुम भेजकर। तो वहां पर कैसे कर रहे हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, जिनको अपॉइंट किया है श्रीमान यमराज जी। वहां यमराज जी हैं जो सबका लेखा जोखा देखते हैं और उसके अनुसार उनको यातना देते हैं। पर्पस क्या था कि जो कुरान की आयतें नहीं मानेगा या भगवान की वाणी का नहीं मानेगा, उसको क्या करेंगे? यातना देंगे। यातना मिलनी चाहिए ना, तो यहां पर लिखा है कुरान में कि यातना देंगे भगवान अल्लाह उनको, और वेदों में पुराणों में डिटेल में बताया कि यातना कैसे मिलती है। कहते वहां का लंबा सफर तय करेगा, बिल्कुल बड़ा लंबा सफर है, 1,00,000 योजन लंबा रास्ता है किलोमीटर में कई, तो उसको लिखा है कितनी यात्रा है, डिटेल यहां पर मिलती है। तो वैदिक ग्रंथ हमें हर चीज डिटेल में बताते हैं, लेकिन जब जब समुदाय के अंदर लोग नहीं समझ पाते या इन चीजों को छोड़कर इधर उधर चले जाते, तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजकर उनको आगे बढ़ाते हैं। तो सेक्रीफाइस हम बात कर रहे थे, इसलिए करे जाते हैं ताकि लोग इंद्र तृप्ति कर सकें, एक भाव ये रहता है, या मुक्त हो सके इस संसार के उससे। तो ये जो सेक्रीफाइस का मतलब था, ये जो यज्ञ का मतलब था, हम बता रहे हैं कि नर बलि भी दी जाने लगी। पहले दी जा रही थी कौन सी? पशुओं की बलि, और चेक करते थे उनको द्वारा जीवन देकर, लेकिन कई जगहों पर बताया जा रहा है कि नर बलि भी होती थी, कई देवताओं पर चढ़ती थी। आपको याद होगा भगवान के एक शुद्ध भक्त को उठवा लिया था, किडनैप कर लिया था, पता है कौन? जड़ भरत महाराज। जड़ भरत महाराज इतने अच्छे भक्त थे भगवान के, अपने पिछले जन्म में जब वो राजा थे, तो राजा बनने के बाद वो सब त्याग कर जंगलों में जाकर भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक हिरण से आसक्त हो गए, अंत समय में उसकी रक्षा कर ली, और फिर अगला जन्म कौन सा हो गया? हिरण का हो गया। कई समुदाय और कई ऑर्गेनाइजेशन आजकल इस तरह के भी चल रहे हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आम का बीज बोगे तो क्या निकलेगा? आम। नींबू का बोगे तो आदमी मरेगा तो अगले जन्म में क्या बनेगा? हाँ, वैसा बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्र हमें कह रहे हैं कि, और स्वयं भगवान कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि करी, कि यम यम वापी स्मरण भावम त्वजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। अंत समय में जैसी हमारी चेतना है और जो हमारे भाव हैं, भगवान कहते हैं मैं शरीर उसको मरने के बाद वैसा वैसा दे दूंगा। और फिर देखा जा रहा है कि जड़ भरत जी जब हिरण से आसक्त होकर मरे तो अगला जन्म कौन सा मिला? हिरण का। तो हम लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए इस कथा से। क्या? कि हमको अंत समय में किसका विचार करना है, अपनी चेतना को किसके लिए परिशिक्षित करना है। तो मनुष्य का जीवन जो है इसको बोलते हैं प्रिपरेशन, तैयारी, और जो डेथ है उसको बोलते हैं फाइनल एग्जामिनेशन। तो जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी है लाइफ, हमारा जो ये जीवन है। तो हमारा जीवन जो चल रहा है उथल पुथल में, भोगों के को ढूंढने में, इकट्ठा करने में, प्रयास में लगा हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग हैं यहां पर, यमराज के गुप्तचर, यमदूतों के शागिर्द या डिसाइपल्स इस संसार में भी हैं, जिनका उद्देश्य है कि यमराज के पास जो लोग बैठे हैं उनके पास खाली ना हो जाए वो कहीं, उनका रोजगार ना छिन जाए, लोग वहां जाते रहें और वो काम करते रहें। इसलिए वो यहां पर लोगों को उत्साहित करते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, मंदिर जा रहा है, ये कोई उम्र है, मतलब क्या दिवालिया हो गया है, क्या किस लिए जा रहा है मंदिर, शरीर में कोई दिक्कत है, किस लिए जा रहा है मंदिर, घर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा है, किस लिए जा रहे हो मंदिर। तो वो अपने उन असिस्टेंट्स के थ्रू लोगों के अंदर इस प्रकार की माया के जो डिसाइपल्स है वो हमको प्रवोक करते हैं, नहीं 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 मंदिर नहीं जाना चाहिए इतनी सी उम्र में, हे भगवान। मंदिर तो कब जाते हैं? साठ के बाद तो पार्क जाते हैं ताश खेलने, मंदिर फिर भी नहीं आते। पूरा जीवन यही बोलता रहा बच्चा, मां ये कोई उम्र है, मां ये कोई उम्र है, जवानों के भी ये कोई उम्र है, तुम्हारी उम्र है, हम तो नहीं, तुमने करनी है भक्ति करो, हम नहीं करेंगे। कब करोगे बेटा? अभी टाइम है, 40-50 के बाद देखेंगे। 40-50 की स्टेज पर लोगों से पूछो, कहता सर यही टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम स्टैब्लिश होने का, बच्चों को स्टैब्लिश करने का, तो अभी टाइम नहीं है। तो कब रिटायर हो जाऊं बस, रिटायर होने के बाद? अभी भी मन घर में आ सकता है, बच्चों में आ सकता है, प्रॉपर्टी में आ सकता है। और आजकल तो हर व्यक्ति के कोई ना कोई केस चल रहा है, हाथ नहीं खड़वा कराएंगे लेकिन चल रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो दूसरों के केस में गवाहियां देने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, गवाही नहीं भी दे रहे हैं तो जो प्लॉट कहीं खरीद के रखा था कि डबल हो जाएगा उस पर कोई और आके बैठा हुआ है, पता भी नहीं चला आपको उस प्रॉपर्टी फोटो किसी और की लग गई। अब वो कह रहा है भैया खाली तब करूंगा जब 10 लाख रुपए तो मुझे देगा। कहता भैया मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतने साल से मैंने FD के रूप में रखी हुई थी यहां, अब मैं इसको बेचना चाह रहा था, तुम बैठे हो इसमें। कहते भाई पेपर मेरे पास भी, कहते मैं कोर्ट जाऊंगा। कहते चला जा, 40-45 साल लगेंगे। कहते अच्छा फिर क्या करूं, तो 10 दे दो। तो हर व्यक्ति कोर्ट में चक्कर लगा रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रहा, पुलिस स्टेशन वाह भी वाह। हमको एक्चुअली भक्त लोग आके बताते रहते हैं ना, किसी की मदद करनी कुछ करना तो पता चलता है। एक आप 100 नंबर फोन तो कर लो एक बार, जरा कोई घर का झगड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो जाए एक बारी। तो जेब में जितने पैसे हैं ना सब दान के रूप में यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है। आप कंप्लेन कर दीजिए, बाद में बोलिए सर आप कंप्लेन हम वापस लेना चाहते हैं, हमारे अंकल जी ने समझा दिया हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कहते अच्छा मैं पागल हूं, मैं रात को सो रहा था तूने मुझे उठा दिया, मैं गाड़ी लेकर आया, तेल लगता है, सब कुछ लगता है, चाय पानी कुछ ना कुछ होता है, तो हमारा क्या। कहते हैं इतना नहीं, कहते हैं तुमने कंप्लेन करी तो ये तो भैया कोर्ट से होगा अब तो वापस है। अभी तो यहीं पर नहीं, अब तो धारा लगा रहा हूँ, कोर्ट से वापस हो गया था, सारे यहीं खत्म कर दो ना। और जो चला गया गलती से कोर्ट, तो आप कोर्ट में जाके भी बोल दो जी गलती हो गई, हमने बात में आपस में कर ली है, अब हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जज के सामने बोलोगे जज बैठे इतना आसान है। रोज सुबह मुझे यहाँ पर 9:30 पहुँचना होता है और 6:30 से पहले मैं जाती नहीं हूँ या जाता नहीं हूँ। तुम्हारे घर के झगड़े सुन सुन के मेरी खुद की घर की हालत खराब हो गई है और तुम ऐसे जाने दो, नहीं जा सकते आप। कहेंगे इसको प्रोसेस बताओ, कहते क्या, कहते पहले पेपर बनाओ, फिर यहाँ पर अटेस्टेड कराओ, फिर उसके बाद जाओ, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर वहां पर बेल लगाओ, फिर उसको पैसे दो, फिर वकील को और इतना दो, उसके बाद 3-4-6 महीने के बाद ये नाम हटेगा। और अभी तो मैंने ये नहीं बताया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए ये जो संसार है, बड़ी उथल पुथल का संसार है, तो यहां पर लोग जो हैं भोगों की तरफ आकर्षित है और यमराज के दूत छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, क्योंकि उनको काम दे रहे हैं उधर, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम पर खाली बैठे रहे। किसी की फैक्ट्री हो उससे पूछो कि अगर लेबर काम नहीं करती, कुछ काम नहीं आ रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो बिठा कर देना पड़ता है कई बार लेबर, है कि नहीं, कितने लोगों को मालूम है, देना पड़ता है। तो सतयुग में ऐसी था, खाली थे ये लोग, त्रेता युग में खाली थे, द्वापर युग में थोड़ा काम चला और अब कलयुग आ गया है। इधर तो बसें भर भर के जा रहे हैं लोग, ट्रेन भर भर कर आ रही है, हर घर में असुर। और फिर उनको ये फ्रेजेस याद कराते हैं, लेट्स डू इट, हु केयर्स, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, टिकट कंफर्म कराओ, यमराज यान तैयार कर रहा है। तो बिल्कुल आकर्षण नहीं बढ़ता। इसलिए भक्ति कब करनी चाहिए, 60, ये दिमाग में सेट है, 60-70 के बाद, और 60 हो जाए तो क्या बात है। अब भी घर में आ सकता है व्यक्ति, दूध का डब्बा हाथ में है, ताश खेलना है, बच्चा खिला रहे हैं, यही चलता रहता है, मुझे बड़े काम है, यही मेरी जिम्मेवारी है। बच्चा कहाँ है आपके, जिसको इसको पालना था वो कहाँ है, वो तो ऑफिस में, वो रात को लेट लेट, आजकल काम का टाइम भी ऐसे हो कि 24 घंटे काम होता है, रात को भी जाते हैं लोग, तो कुछ है ही नहीं, माता पिता को देखा ही नहीं बच्चों ने, दादा दादी को देख के बड़े हुए हैं। हफ्ते में 1-2-3-4 इकट्ठे लोग मिलते हैं, कोई मेड होती है, कोई वाइफ होती है, कोई मामी होती है, कोई चाची होती है, पिताजी होते हैं, तो कहते हैं इनमें से कौन है बड़ी दिक्कत है। तो इस प्रकार जो लोग भोग की तरफ लगे वो इस प्रकार से उन जगहों पर जा रहे हैं। तो बता रहे हैं जो पनिशमेंट देते हैं अल्लाह वो इस तरह से देते हैं, अपॉइंट किए हुए लोग। अब सेक्रीफाइस की बात की जा रही है, नर बलि की बात की जा रही है, तो आज हम देखते हैं जो ये बकरा ईद होती है ना, बकरा ईद सुना आप लोगों ने, खाया तो नहीं ना। बकरा ईद कैसे शुरू हुई बताते हैं कि इनमें भी भगवान के एक भक्त थे, उनको स्वप्न में आ गया कि तुम जो है अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे क्या करो, सेक्रीफाइस करो, बलि दो उसकी मुझे। तो इस्माइल थे शायद, तो उनको अपनी सबसे अपने पुत्र की जो है बलि देने के लिए भेजा गया, सबसे प्रिय चीज भगवान देखना चाहते थे, ये भक्त जो है अपने सबसे प्रिय चीज मुझे अर्पित करता है कि नहीं करता, कहीं अटैच तो नहीं उससे, क्योंकि अगर हम इस संसार में किसी भी चीज से अटैच है तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब छुटकारा, जो यहां से लिया उससे छुटकारा और जो यहां पर रखा है उससे छुटकारा, मुक्ति कहते हैं उसको। तो उन्होंने कहा भी देखते हैं अभी अपने पुत्र को दो, तो उन्होंने पुत्र की बलि देनी चाहिए। और जैसे ही बलि रखी और काटने का प्रयास किया गया, मारने का प्रयास किया गया, तो वहां पर बेचारा वो गायब हो गया व्यक्ति, और उसकी जगह पर एक बकरी खड़ी मिली, बचा लिया भगवान ने, कहते नहीं हम तो तुम्हारा दिल देख रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद से एक नई प्रथा शुरू हो गई। क्या प्रथा थी कि भगवान को क्या पसंद है, बकरी पसंद है, बकरी या बकरा है, अब स्त्रीलिंग पुलिंग का छोड़ दो ना, बकरा पसंद है भगवान को। तो अभी तब से प्रथा शुरू हुई और तब से अब बकरे पालने लगे, पूरी मंडी लगती है। गए कभी मंडी में खरीदने गए,
तो पूरी बकरी है वहां, बकरी की मंडी है, ऊंट भी बकरे हैं, क्या क्या नहीं बिकता वहां पर, पैसे दिए जाते हैं, अच्छा हट्टा कट्टा बकरा लाया जाता, बकरी ईद के दिन काटा जाता उसको। और कितने बकरे कटते हैं, कितना खून बहता है, बकरे कट के फिर खाए जाते हैं। लेकिन ये प्रथा जहां से शुरू हुई, अगर थोड़ा सा उस तरफ चले जाएं तो पता चलता है कि अल्लाह ने तो उस व्यक्ति को मांगा था, अपनी सबसे प्रिय चीज दो मुझे, संतान में तुम्हारी यह शक्ति, अपनी संतान की ऑफरिंग मुझे करो। तो अगर आपको बकरा भी खाना है मान लीजिए, तो उससे पहले क्या करना चाहिए, अपनी संतान की बलि देनी चाहिए। और अगर भगवान तुमसे प्रसन्न है तो क्या करेंगे, संतान को हटा के फ्री में बकरा दे देंगे, 16-18 हजार रुपए भी नहीं लेंगे आपसे। और अगर भगवान चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं कि नहीं ये बस आ जाए मेरे पास, तो कट जाएगा। अब धन्यवाद बोलो भगवान कि आपने मेरा बच्चा स्वीकार कर लिया। तो कितनी बड़ी प्रथा चल पड़ी, और आज उसको हटाना मिटाना बंद करना इतना मुश्किल हो गया, उनको समझाना, क्योंकि मुंह पे तो खून लग गया, अब उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्राइस्ट ने कहा 10 कमांडमेंट्स में, दाउ शुड नॉट किल, तू वध नहीं करेगा किसी का। अब वध नहीं करेगा तो फिर मीट कैसे खाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, बाइबल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, जहां पर लिखा था दाउ शुड नॉट किल, उसकी जगह लिख दिया दाउ शुड नॉट मर्डर, तू कत्ल नहीं करेगा किसी आदमी का। मर्डर एक दूसरे का होता ना आदमी का, किल कर सकता है, अन्य पशु पक्षियों को खा सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं होती, ये खुद की फिलॉसफी बनाई, जबकि उसके अंदर भी आत्मा है। लेकिन क्या किया, जस्ट टू सेटिस्फाई दिस टंग सेंस एंजॉयमेंट, और वहां पर नर्क में, जहन्नुम में, हेल में जो कार्यकर्ता हैं उनको अंगेज रखने के लिए क्या शुरू हुआ, स्लॉटर हाउसेस शुरू हो गए, भारी मात्रा में लोग यहां से जा रहे हैं। तो इस प्रकार जस्ट टू सेटिस्फाई दिस टंग, इतनी इस जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जा रहा है, बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गियां खाए, जो भी करा जा रहा है। अच्छा तरीका देखिए क्या है, पूरे शरीर में इस 5-6 फीट के शरीर के अंदर केवल 1 से 1.5 इंच का एरिया ऐसा है जो आपको यह बता सकता है कि आपने खट्टा खाया, मीठा खाया, नमकीन खाया या तीखा खाया, 1 इंच का एरिया। आप यहां पर लगाइए रसगुल्ला, बताएगा मीठा है, इधर लगाइए, करीब रख के लगाइए, बताएगा। कहां से पता चलता है, ब्रेन से, यहां लगा लीजिए, मिर्च लगाइए, हमें मिर्च लगेगी, कहां लगेगी, जीवा कितने इंच की होती है, अपनी अपनी बताइए, 5 इंच 6 इंच की, उसमें भी सारी जीव की बात नहीं कर रहे हैं, और उसमें भी नीचे वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भी ऊपर वाला पोर्शन, और 6 इंच में भी केवल 1 से 1.5 इंच का आगे का एरिया, दैट्स ऑल। इसके पीछे क्या चला गया किसी को नहीं पता क्या था वो, और केवल इस 1.5 इंच को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा व्यक्ति संसार भर में घूम रहे हैं, करीम का ढाबा ढूंढ रहे हैं, चांदनी चौक में परांठे वाली गली ढूंढ रहे हैं, और बकरे ढूंढ रहे हैं, स्लॉटर हाउस बन रहे हैं, केवल जस्ट टू सेटिस्फाई दिस 1 इंच एरिया ओनली। अरे क्या इतना सा कंट्रोल कर लो ना, क्या दिक्कत, नहीं हो रहा। तो जो बलि दी जाती थी, इन बलियों के चक्कर में जब लोग ब्राह्मण शुद्ध नहीं रहे, मंत्रोच्चारण शुद्ध नहीं रहा, तो फिर भी बलि दिए जाते थे, और बाद में ओम शांति। तो भगवान को स्वयं माना पड़ा, कहते भाई तुम लोगों की बुद्धि खराब होगी, तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा ग्रंथ, किसी के अंडर में रह के पढ़ते नहीं हो, बलियां दे जा रहे हो, ये भी तो मेरे बच्चे हैं। तो स्वयं भगवान अवतरित होकर आ गए बुद्ध के रूप में, स्वयं बुद्ध के रूप में कृष्ण अवतार लेकर आ गए, और क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म। भैया तुम मारो काटो मत, अहिंसक रहो, यही परम धर्म है। अभी तुम्हारे लिए तो परम धर्म है, वो बच्चे मेरे पास आते हैं, माएं मेरे पास क्रंदन करती हैं, गायें रोती हैं, बकरे रोते हैं, सब मेरे पास आते हैं, कहते काट रहे हैं हमें, खा रहे हैं, तो मुझे उनका क्रंदन सुना नहीं जाता, इसलिए तुम्हें समझा। कहते बट वेदों में लिखा है सर, देखो बलि लिखा, अब कहते बलि जब लिखा था तब लिखा था, तब मंत्रोच्चारण शुद्ध था, सामग्री शुद्ध मिलती थी, ब्राह्मण शुद्ध थे, चेतना शुद्ध थी, लिबरेशन के लिए करते थे, तुम खाने के लिए कर रहे हो, तो बंद करो, अहिंसा परमो धर्म। तो पूरी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो रोज काट पीट के खा रहे थे, क्या बना दिया, अहिंसक बना दिया, बौद्ध भिक्षु बना दिया उनको। और बस वो घूमते रहते हैं हरे कृष्णा करते करते, हरे कृष्णा नहीं करते, ओम न्याम उसका मंत्र है उनका, वो करते हैं। तो भगवान का मैनेजमेंट देखिए आप, हम घर मैनेज करते हैं, घर में कुछ लाते हैं, बच्चा मांगता है, ये भी मांगता है, तो एडजस्ट करके देते हैं, किसी को छुपाते हैं, किसी को देते हैं, किसी को पानी मिला कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं एक घर चलाने के लिए। थोड़ी ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें भी खर्चा देख कर करते हैं, इसको अंदर, इसको बाहर, इसको इधर, इसको ये शिक्षा, उसको वो शिक्षा, इसको इतना पैसा, उसको इतना पैसा, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है। भगवान क्या चला रहे, पूरा संसार। अब पूरा संसार चलाने के लिए यहां पर कम्युनिटीज को भगवान को ठीक करना पड़ता है, ये इधर चले गए, ये गलत हो गए, ये इधर चले गए, इनकी अपनी बोली, ये इधर चले गए, तो भगवान कहते हैं इसको, अच्छा तुम इधर आओ, तुम जाओ, अपने पुत्र को भेजा, तुम यहां जाओ। यीशु ने कहा आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, 10 कमांडमेंट्स दी, उनको समझाया। इधर देखा अरब कंट्री में ये तो कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ झुकता नहीं, यहां भी जनसंख्या रह रही है, कैसे जिएंगे, और क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, माता बहन में भी फर्क नहीं कर रहे हैं, ओ तो क्या करें, मोहम्मद जी को भेजा जाओ भाई, बचाओ इनको। तो उन्होंने कुरान उतारी, कुछ दे तो दो कॉपी, हाँ जी ये लो कुरान लो, अब समझाओ इनको। तो क्या डिटेल दी, आप ये जो हैं, आपके अलावा कोई नहीं है, अच्छा इनको दूसरे के पास नज़दीक मत जाने देना क्योंकि उनकी फिलॉसफी से भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए इनको दूर रखो उनसे, यही सब समझाओ। तो इस प्रकार उनको अलग शिक्षा दी गई। तो भगवान पूरा संसार मैनेज कर रहे हैं और उनको ये लेके चलना 4,32,000 तक, कब तक, 4,32,000 वर्षों तक ये संसार चलाना भगवान, उसके बाद दोबारा आएंगे। तो तब तक चलाने हैं तो कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं रिलीजियस प्रिंसिपल टूटेंगे, कहीं पर अधर्म होगा, फिर कहीं पर धर्म का पालन शुरू हो जाएगा, फिर किसी नेता को भेज देंगे ये करो, तुमसे ये नए नए प्रिंसिपल्स बनवाएंगे, कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे, करते रहेंगे, इसमें बस ये लगा रहेगा। और हम जैसे लोग 4,32,000 तक बार बार आएंगे जाएंगे, बूढ़े, ये सब चलता रहेगा, हमारा भी आना जाना चलता रहेगा और हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो भी यज्ञ करेगा। कलयुग में यज्ञ करना है तो संकीर्तन यज्ञ है, और संकीर्तन यज्ञ जब करेगा ना तो संकीर्तन यज्ञ से उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, और जहां पर नरकों में जो जा रहे हैं लोग पाप करते हुए, उधर नहीं जाएगा। यह भवेत भयम, जो भय भी जिसे डरता है भगवान के नामों से, उधर नहीं जाना। यमराज ने अपने दूतों को पास बुला के बोला, ये जो कथा वथा सुनते ना भागवत वगैरह की, कहते हैं इनके पास तो खबर था कभी गलती से चले गए, बोला है श्रीमद् भागवत महात्म्य में, यमराज जी ने दूतों को बुलाया, उनके कान में बोला, थोड़ा तेज भी नहीं, कहते हैं ये जो कथा सुनने वाले ना, कृष्ण कथा जो सुनते हैं, खबरदार इनको मत लाना। अच्छा यमराज के दूत ऐसे थोड़ी कि एक ही, बहुत सारे दूत हैं, हर जगह भेजना पड़ता है। एक बार वो अजामिल को भी ले आए थे जबकि उसने नारायण बोल दिया था, तो वो दूसरा सेट था लोग दूतों का, वो भी गए, कहते जी किसको लाने किसको नहीं, थोड़ा क्लियर तो कर दो, कहते नहीं नहीं उनको मत लाना जो भगवान का नाम लेते हैं, जो हरि नाम ले रहे हैं, उनको उनकी जगह नहीं है। और एक बार और ऐसा हुआ, वो चोर गिरा छत से, भगवान की ज्वेलरी लेकर कूद रहा था, तो लोगों ने मारा, तो यमराज के दूत लेने गए उसको, वहां भी विष्णु दूत पहुंच गए, कहते नहीं ले जा सकते इसको, कहते क्यों भाई, कहते क्योंकि इसने जो है, कहते इसने तो भगवान के मंदिर में चोरी की है, कहते हाँ चोरी की है, दिक्कत में था लेकिन प्रणाम कर दिया था इसने, प्रणाम किया, चोरी की है, प्रणाम कर दिया, तो प्रणाम करने से क्या है, सारे पाप खत्म, उसके बाद तो मरे हैं, उसके बाद तो फिर कुछ करा ही नहीं इसने, प्रणाम करते सारे जीवन के खत्म हो गए उसके, कहते नहीं नहीं बट चोरी करी है, और कहते हाँ तो प्रणाम भी तो कर दिया। कहते इतना ही नहीं, इसने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन इसने मंदिर में जब एंटर किया था तो इसने देखा कि एक पत्थर निकला हुआ है, तो कीचड़ से इसने क्या किया, जो उसके पैरों में कीचड़ लगा था उस पत्थर पे लगाया, उस पत्थर को सही जगह फिक्स कर दिया, तो भगवान ने इसको मंदिर कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट मान लिया, और इसलिए भगवान ने इसके लिए एक परमानेंट वैकुंठ में घर बना दिया, तो ये उधर जाएगा, नरक में नहीं जाएगा ये। तो फिर उधर गया हूं, तो महाराज के दूसरे परेशान, भैया किसको लाने किसको कर बताओ ना। कहते भी तुम्हारी संख्या भी इतनी सारी है, हर एक को अलग अलग बताना पड़ता है। तो यमराज के दूत भी जो हैं कई तरह के हैं, और वो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी। तो यहां पर जो यज्ञ की हम बात कर रहे थे, अब कलयुग में क्या यज्ञ है, बड़ी यातना के साथ जो किया जाता है, बड़ी मुश्किल के साथ किया जाता है कि नहीं। आजकल का यज्ञ तो विवाह यज्ञ है ना, ये भी अपने बहुत बड़ा यज्ञ, इतनी कठिनाई के साथ किया जाता है, और उसके बाद जीवन भर यज्ञ में आहुति डालते रहो बस। और इस प्रकार जो है कलयुग का यज्ञ जो है सबसे अच्छा यज्ञ है कि व्यक्ति क्या कर ले, जो हरिनाम संकीर्तन है उसकी शरण ले ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, क्योंकि हमारे ऊपर सबके ऊपर ऋण है, अगर हम नहीं चुकाएंगे यज्ञ नहीं करेंगे तो उनका ऋण देना पड़ेगा, और ये ऋण चुकाए बगैर आप हमारा उद्धार नहीं है। जैसे कलयुग में होता है कि अगर आपके पास केस चल रहा है और केस की डेट आते आते या रिजल्ट आते आते अगर आप चले गए तो केस आपका तो केस बंद। वैसे लोन सिस्टम है, किसी को लगता है कि मैंने लोन ले रखे हैं इतने, तो अगर मैं सुसाइड कर लूं तो लोन खत्म। अब लोन का मुझे आगे नहीं मालूम कि कैसे वसूल करते होंगे, बट यहां पर क्या बताया है कि अगर हमारे, क्योंकि पांच प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए जाते हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए, उसमें एक है यज्ञ देव यज्ञ बताया गया, ये भगवान के लिए किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उनको प्रार्थनाएं करके किया जा सकता है जैसे हम करते हैं यहां पर। दूसरा बताया गया पितृयज्ञ, हमारे जो एंसेस्टर से पितृजन थे, जैसे गीता में बताया पितृयज्ञ है ना, पितृवंति पितृवताम, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के बीच में, तो पितृयज्ञ भी करना पड़ता है, उनका भी हमारे ऊपर क्या है ऋण है, तो अगर नहीं करते ना तो पता चल जाता है, पितृ दोष लगता है लोगों को, तो घर में कला बिजनेस में दिक्कत, ये वो कई तरह की चीजें लगी रहती है। तो लोग तर्पण करते हैं, तीर्थों में जाके जल अर्पित करते हैं, तो जाके उनको पितृ दोष से दिक्कत बचती है। तीसरा यज्ञ बताया गया है भूत यज्ञ, जिसमें सभी जीव भूतात्मा एनिमल हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स एंड बीस्ट हैं, इन सब के लिए भी, तो उनके लिए भी लोग ऑफरिंग करते हैं, चना डाल दिया, बाजरा डाल दिया, सब डाल दिया, हरे को तो डाल नहीं सकते बट जितना डालते हैं डालते करते हुए देखा होगा आपने लोगों। और एक यज्ञ बताया गया है मनुष्य यज्ञ, जिसमें गेस्ट की बात की जाती है, गेस्ट को देवता माना जाता है ना, भगवान के समान माना जाता है। तो बताते हैं जो गेस्ट आते हैं घर में तो उन गेस्ट का अतिथि सत्कार करना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए, बैठने का जल देना चाहिए, मीठे शब्दों से उनका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अगर गेस्ट रूठ कर चला गया तो आपके द्वारा अभी तक के अर्जित पुण्य वो लेके चला जाएगा। अगर गेस्ट रूठ कर चला गया तो क्या होगा, हमारे द्वारा जो दान पुण्य करके जो अभी तक हमने पुण्य कमाए थे वो सारे लेके चला जाएगा, और उसके द्वारा उस गेस्ट के जितने अभी तक के क्या थे पाप थे वो छोड़ के चला जाएगा। तो मनुष्य यज्ञ वो भी करना पड़ता है। और आखिरी यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, ये कैसे होता है, ये आज कैसे पालन कर सकते हैं इसमें, कि हम लोग जो हमारे गुरुजन हैं साधुजन हैं उनकी जो वाणी है या जो ग्रंथ है इनका पढ़कर इनका पालन कर हम लोग वो ब्रह्म यज्ञ भी कर सकते हैं। अभी समस्या क्या, अभी इन यज्ञों के चक्र में पड़ जाएंगे तो फिर ऑफिस कौन जाएगा, काम कौन करेगा, यज्ञ जरूरी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहते हैं देव ऋषि भूतात्मा
निर्णाम पितृ नाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन। फिर बताया सर्वात्मया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदा प्रहृत कृतम, कि अगर कोई व्यक्ति मुकुंद की शरण ले लेता है, मुकुंद वो जो मुक्ति प्रदान करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, उनके नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, शास्त्र पढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को इतने सारे जो ऋण है उसके ऊपर वो अलग से चुकाने की आवश्यकता नहीं है। केवल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर वो हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है, चाहे वो देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, मनुष्य के प्रति, भूत के प्रति, वृक्ष इत्यादि के प्रति, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है उनसे, उनके ऋण है हमारे ऊपर। तो केवल हरिनाम के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, गीता पढ़कर हम लोग उन सब ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए अलग से यज्ञ का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। कलयुग चल रहा है, संकीर्तन यज्ञ करें, जो कि शास्त्रों में जिसका अनुमोदन है, हरिर्नाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। गति नहीं है इसके अलावा कलयुग में, और कोई साधन नहीं है। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही उद्धार करेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। हरे कृष्णा। तो सबको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।